हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दादाजी को अपने कमरे में देखकर झलक थोड़ी हैरान रह गई। साथ ही वो समझ भी चुकी थी कि वे किसी बेहद जरूरी बात के लिए उसके पास आए हैं। उन्होंने झलक का हाथ पकड़ लिया था और उसकी ओर देखते हुए बोले थे, मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर देना। अपने पिता को इस तरह माफी मांगते हुए देखकर झलक के माथे पर बल पड़ गए। वो तुरंत बोली, आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हैं? क्या हो गया है आपको? आरव भर्राई हुई आवाज में बोले, आज जो कुछ भी तुम फेस कर रही हो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, पूरी तरह से उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर मुझे पहले से पता होता कि नैना ओबेरॉय इतनी घटिया चाल चलेगी तो मैं कभी उसकी बातों में नहीं आता और अपने पूरे परिवार को छोड़कर यूं इस तरह उसके पीछे नहीं जाता। जैसे ही आरव ने एक बार फिर अपनी गलती की माफी मांगनी शुरू की, झलक ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया और बोली, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वैसे भी प्यार करना कोई गलती नहीं होता। धोखा आपके साथ हुआ है, आपने किसी को धोखा नहीं दिया और मेरी जिंदगी कोई बर्बाद नहीं हुई है। अगर मेरी जिंदगी में किसी ने मुझे चोट पहुंचाई है तो उन सब का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास है। अभी मैं खुलकर कुछ नहीं कह रही क्योंकि अभी मैं उन्हें एहसास कराना चाहती हूँ। अभी वक्त नहीं आया है उन्हें उनकी सही जगह दिखाने का, उनका असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाने का। ये सुनकर दादाजी तुरंत झलक की ओर देखते हुए बोले, बेटा मैं तो तेरे बाप को समझा समझा कर थक गया हूँ। मैं कब से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह अपनी बेटी को लेकर परेशान मत हो। तेरी बेटी फौलादी है, वो हर किसी का सामना कर सकती है, लेकिन ये मेरी बात समझ ही नहीं रहा, ना सुनने की कोशिश कर रहा है। फिर दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, अब मेरी बात सुन बेटा, मैं भी अब तेरे पिता की तरह थोड़ा सा तेरे बर्ताव को देखकर डर रहा हूँ। तू जानती है हमने पहले ही आदित्य को तेरे लिए पसंद कर लिया है, इसलिए हमने उसे तेरे पीछे भेजा क्योंकि वो तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। तेरे अलावा वो कभी किसी और को देखकर तक नहीं देखेगा। तूने शायद ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन तेरे अलावा उसने किसी और पर नज़र उठाकर भी नहीं देखा है। वो बहुत अच्छा लड़का है बेटा, बहुत अच्छा। दादाजी आगे बोले, और तू ये भी जानती है कि वो भी तुझे पसंद करने लगा है। आज बलबीर जब यहाँ आए थे तो वही बात बताने आए थे, तू उसे बहुत पसंद आ गई है। पहली बार आदित्य किसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। उसने खुद अपने दादा से अपनी इच्छा जाहिर की है। तूने भले ही उसे रिजेक्ट कर दिया था लेकिन उसके बाद जिस तरह तू जाकर बलबीर से मिली, उनके हालचाल पूछे, वो बात उसे और ज्यादा छू गई। वो तुझे बेहद पसंद करने लगा है। ये सुनते ही झलक की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो तेज स्वर में बोली, दादाजी प्लीज़ आप लोग फिर से ये बात शुरू मत कीजिए। मेरी ज़िंदगी में किसी आदमी की कोई जगह नहीं है और ना ही मैं किसी आदमी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहती हूँ। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। क्या मैं अपनी ज़िंदगी अकेले नहीं गुजार सकती? क्या मुझे किसी आदमी के सहारे की ज़रूरत है? आरव ने समझाने की कोशिश की, बेटा हम तो बस तुझे खुश देखना चाहते हैं, तेरा घर बसा हुआ देखना चाहते हैं। झलक ने तुरंत जवाब दिया, क्या मुझे अपना घर बसाने के लिए किसी आदमी की ही ज़रूरत है? क्या आप लोग मेरे घर के मेंबर नहीं हैं? क्या मैं आप सबके साथ खुश नहीं हूँ? तभी अनामिका थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, नहीं झलक तुम खुश नहीं हो। तुम्हारी आँखों का ये खालीपन, तुम्हारे दिल की ये नफ़रत, तुम्हारा दिल जो पत्थर बन चुका है ये मुझसे छुपा नहीं है। देखो भले ही मैं तुम्हें बहुत सालों से ना जानती हूँ लेकिन जितनी बार भी मैं तुमसे मिली हूँ मैंने साफ महसूस किया है कि तुम पहले क्या थी और अब क्या हो। पहले वाली झलक पता नहीं अब कभी वापस आ भी पाएगी या नहीं। इसी दौरान सौरभ जी और स्नेहा जी भी वहां आकर खड़े हो गए। स्नेहा जी ने झलक की ओर देखते हुए नम आंखों से कहा, हम शुरू से जानते हैं बेटा तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रगल के सिवा कुछ नहीं था। कभी हमारे लिए, कभी किसी और के लिए, तुमने हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों के लिए संघर्ष किया। लेकिन अब हमारी भी एक छोटी सी इच्छा है, सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना। क्या हमें इतना हक भी नहीं है कि हम अपनी बेटी की जिंदगी में खुशियां देख सकें? झलक ने सौरभ जी का हाथ पकड़ लिया था और बोली थी, आखिर आप लोगों को हो क्या क्या है? क्या सभी ने एक टीम बना ली है जो इस तरह की बातें मुझसे कर रहे हैं? तभी सौरभ जी तुरंत आ गए। उन्होंने झलक को अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, अगर तुम ये सब कुछ नहीं करना चाहती तो मुझे मेरी बेटी लौटा दो। मेरी वही बेटी जिसके चेहरे की मुस्कान कभी खत्म नहीं होती थी। मेरी वही बेटी जो किसी के दुख पर तुरंत खुद दुखी हो जाया करती थी और उसका हल ढूंढ लिया करती थी। मेरी वही बेटी जिसका चेहरा हमेशा खुशहाली से महकता रहता था। लौटा तो मुझे मेरी बेटी। मुझे ये वाली बेटी नहीं चाहिए जो हमारे लिए दिखावे की मुस्कान अपने चेहरे पर सजाती है। मुझे ये वाली बेटी नहीं चाहिए जिसके सीने में इतना ज्यादा दर्द भरा हुआ है। इस तरह की बातें सुनकर झलक पूरी तरह से अंदर तक हिल गई क्योंकि आज तक सौरभ जी ने उससे इस तरह कभी बात नहीं की थी। लेकिन जिस दर्द और सच्चाई के साथ वे बोल रहे थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें रोता देख सब लोग भावुक हो गए। खासकर अनामिका ने झलक का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। ये सब देखकर झलक भी खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली,
आखिर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है मैंने पुराने वाली झलक बनने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन कैसे उठाती मैं खुद को, आप ही बताइए। जब इतने सारे लोग एक साथ खड़े होकर मुझे नाजायज कह रहे थे, तब मुझ पर क्या बीत रही थी ये मैं आपको समझा भी नहीं सकती। वो आगे बोली, जिन लोगों ने मुझे अपनाया था, जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, खासकर उर्वशी खुराना और सिद्धार्थ खुराना। सिद्धार्थ ने हमेशा मेरी मदद की थी, हमेशा मेरा साथ दिया था, लेकिन जिस दिन मेरे नाम के आगे नाजायज का ठप्पा लगा, उसने मेरी ओर देखना तक छोड़ दिया। जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता था, वो एक पल में बदल गया। आर्यन रायचंद, जो हमेशा हमारी दोस्ती की मिसाल दिया करता था, जिसने मुझे एक सच्चा दोस्त कहा था, उसने भी मुझे इस तरह ठुकरा दिया जैसे मैं कोई गंदगी हूँ, जैसे मेरे पास आने से वो अपवित्र हो जाएगा। सब लोगों ने मिलकर मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। वो माँ जिसने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसने भी अपने फायदे के लिए हमेशा मेरा इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि मेरी जान लेने की कोशिश की। मेरी इज्जत, मेरी भावनाएं, उसने कभी नहीं सोचा। एक सौतेली बहन जिसने रिश्ते का नाम लेकर सिर्फ जहर ही दिया, क्या यही रिश्ते मेरी जिंदगी में बने थे? इन सब रिश्तों ने मुझे इतना तोड़ दिया है कि अब मेरी जिंदगी में किसी और रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं बची। अब मेरा परिवार अगर कोई है तो सिर्फ आप लोग हैं, मेरी ये बहन जो मेरी सगी से भी बढ़कर है, मेरे पालने वाले माँ बाप जिन्होंने मुझे दुनिया की हर खुशी दी, मेरे दादाजी जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया, और मेरे वो पिता जिन्होंने सालों का दर्द सहकर सिर्फ मुझे बचाने के लिए हिम्मत दिखाई। अब सिर्फ आप लोग ही मेरा परिवार हैं। वो कुछ पल रुकी, फिर गहरी सांस लेकर बोली, और अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई आदमी आए तो ठीक है, अगर आदित्य राणा वाकई मेरी जिंदगी में आने के लायक है तो मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं उसे एक मौका जरूर दूंगी, लेकिन अभी आप लोग प्लीज मुझ पर दबाव डालना छोड़ दीजिए।
जैसे ही झलक ने ये कहा, सबके चेहरों पर आंसुओं के बीच हल्की सी मुस्कान आ गई। कम से कम उसने कुछ तो स्वीकार किया था, उसने पहली बार किसी के लिए अपने दिल का दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ा था। सबको यही डर था कि कहीं झलक अपनी जिंदगी में कभी किसी आदमी को जगह ही न दे, लेकिन आज उसने कम से कम इतना तो कह दिया था कि अगर आदित्य राणा सच में उसके लायक हुआ तो वो उसे अपनी जिंदगी में आने का एक मौका जरूर देगी। बस यही बात उन सबके दिलों को सुकून देने के लिए काफी थी।